kemudian perasaan kejadian Tuhan. Ketika peperangan dengan Tuhiki, Krishna ka ekantik aur vidwan bhakt nahi hai, jo aaj Krishna ke charan mein pushpanjali dene ke liye हमारे अयोध्या से बड़े बड़े विद्वान भी लाए जाते हैं जिनका कृष्ण भक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे कोई उधारी दुर्गा नारी का वर्णन करने वाले लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि दिए जाए। मैं तो समझता हूँ कि यह मथुरा मंदिर के विद्वानों का अपमान है, अपमान ही नहीं घोर अपमान है। यहाँ के विद्वान का कहीं भी समागम मान नहीं है, तो उसके संचालक लोग शायद ऐसे ही। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि पिछले के समय में पंच के लिए कृष्ण का आविर्भाव हुआ। यहां पर वैदिक संस्कृति का आदर नहीं होता, धर्म का आदर नहीं होता, विद्वानों का आदर नहीं होता, गायों का आदर नहीं होता, वृक्ष कटे जाते हैं, ये सब तो असुओं का कारण है। इसे उसको दमन करने के लिए कृष्ण का आविर्भाव हुआ। उस समय कृष्ण कारागार में बंद उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, तो उनके लिए भी तो जेल खाना खुल गया आधी रात में। किंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर संत चारू से भी और मुस्तिक इत्यादि से भी बड़े बड़े, अब उनके लिए मैं क्या शब्द का प्रयोग करूँ, असुर बोलूँ, राक्षस बोलूँ, ना क्या करूँ, जहाँ मथुरा का एक पंक्षी भी चोट मार नहीं सकता, उसमें कोई भी जा नहीं सकता। यहाँ पे नागरिक तो जा ही नहीं सकते, विद्वान को जाने को तो कोई समाता में है ही नहीं। एकांतिक भक्त प्रिय है कृष्ण, यहाँ पर एकांतिक भक्त ही नहीं है। वो लोग कहाँ कहाँ देश विदेश से बुलाए जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और हमारे लिए बड़ी भलाई की बात है। मथुरा में वृंदावन ये एक एक के आवाज और एकांतिक परम भक्त परम भागवत है, और इनकी पूछ कर इसमें हम लोगों का भी कुछ, हम अपने कर्तव्य का अवहेला करते हैं। जब ये पुलिस और ये सब जितनी व्यवस्था है, यदि स्वर्ण मंदिर में करें तो मैं समझूं, यदि ये लोग कहीं स्थित मंदिरों में यदि कुछ करें, वहां पर कोई भी एसपी और डीएसपी और लोगों की बात क्या है, पुलिस का सबसे बड़ा भी वहां पर आ जाए, पहुंच जाए, तो वहां उनमें बौद्धों के किसी मंदिर में पहुंच जाए तो पुलिस इत्यादि ईसाइयों के यहाँ चतुर्थ विचार पहुंचे तो, और यहाँ मथुरा में सिगरेट पीते हुए तंबाकू पीते हुए चलते हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम लोग अपने स्वर को उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे विद्वत जनों को भी मालूम होता है, उनको भी लज्जा नहीं चाहिए कि हम लोग खड़े होकर के इस तरह से उनका प्रतिवाद नहीं कर सकते। ऐसी आवश्यकता रहेगी हम लोग सभी जनों को सके। तो मैंने निवेदन किया, हमारी धृष्टता हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि ये सब चीजों की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई स्वर नहीं था। मैं देखा वहां गया, 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा, अस्वस्थ भी बहुत कहा भी, किंतु हमने पूछते क्या कि हम तो आज जन्म दिवस में जाएंगे सब धन्य जाता है, इसलिए नहीं तो कोई जाता कुछ नहीं है। खैर दूसरी बात ये, जैसे हमारे चतुर्वेदी जी ने बताया, मैं न तो विद्वान हूं न तो संत हूं, किंतु संतों और विद्वानों का मैं समादर करता हूं। इसलिए मैंने वृंदावन में भी यहां भी मैंने विद्वानों को समादर करने के लिए, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए एक वहां पर भी सभा बुलाई थी कुछ दिन पहले, गोस्वामी जी के भावती के अवसर पर, और आज कृष्ण जन्म महोत्सव की श्रृंखला में मैं तो चाहता था ये मथुरा के सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, मुझे तो ये डरता था कि उनको जब भी बोलने का अभी समय नहीं दिया गया तो अपना अपमान न समझ गए, किंतु फिर भी उनका विचार भी समझना चाहता था, सुनना चाहता था, जिसका लोग भी संपर्क नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये सभा का आयोजन किया जिसमें विद्वानों को मैं समागत करता। दूसरी बात, जैसा कि हमारे परम पूजनीय वासुदेव कृष्ण जी ने कहा, प्रारंभ से ही हमारा इनका संबंध रहा और जब जब और सप्ताह हुई हमारे सब समय ये सहायता के लिए तैयार। हमारी भागवत पत्रिका में इनको पहले संपादक किए में रखा था और पीछे से हमने इनको संपादक का संघपति इनको हमारे गुरु जी के आदेश से मैंने इनको किया, इसलिए उसमें प्रबंध देना उसमें जब जब जरूरत हो आते थे, इसलिए इनका मैंने विशेष रूप से समागत। दूसरी बात, हमारे परम वयोवृद्ध श्री मनोहर लाल जी शास्त्री हैं, इनकी दिव्यता को तो क्या कहना, सोने में सुहागा, भागवत के अद्वितीय पंडित जी हैं और बच्चों को आज भी भागवत की शिक्षा दे रहे हैं। ये दोनों महाभाव जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों को तो मुझे परिचय अधिक नहीं है, किंतु जहाँ तक परिचय है, संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए, भागवत की रक्षा के लिए ये सब छात्रों को पढ़ाना, हमारे चतुर्वेदी जी के वृंदावन में एक संस्कृत पाठशाला का अध्यय जिसमें बच्चों को भागवत की और संस्कृत का ये सब दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तो इन सब के लिए मैं इनका विशेष रूप से समागत करने के लिए भी हमने ये सभा का आयोजन किया। अब मैं चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि विद्वानों को इस विषय पर कुछ बोलने के लिए अनुमति। मैं पहले इनको भी इस सभा में कुछ बोलने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि यही आरंभ करें।
अरे वाह,
इसके बाद में आप समझा
महाराज जी, मुझे तो पीछे रहना चाहिए। महाराज जी ने अभी एक बहुत सुंदर बात और बड़ी भयंकर बात कही, शोचनीय बात। कृष्ण जन्मभूमि की जो चर्चा की आपने बगैर नाम लिए, बात खटमले वाली है। यहाँ के वैष्णव आचार्यों की उपेक्षा करके, मथुराष्ट्र विद्वानों की उपेक्षा हमेशा करते हुए और कृष्ण जन्मभूमि पर जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है उसकी ठेस महाराज जी के हृदय में है, वो आज प्रकट हो गया। महाराज जी हमको बड़े अभ्यास हैं पिटने के, कंस के समय से पिटे और 5000 बरस तक मुसलमानों ने गर्दन काटी तब भी न मरे, बड़ा भी यही मथुरा की मथुरा में आ गए। कोई कब बन जाए सहज संभाव्य है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। आज वे मथुरा के विद्वानों की उपेक्षा करें और एक वैष्णव के हृदय में ये भाव उदित हो, हमारा इसमें दोष या यहां की जनता का। मुझे याद है उस चबूतरे पर, गर्भगृह पर हमने कार्यक्रम किया, मथुरा के ही एक व्यक्ति ने यहां पर हमेशा के कलंक को बचाने के लिए अपनी छाती आगे कर दी थी, अन्यथा अब तक वो मिट गया होता। गर्भगृह से लेकर वहां उन पूजा के कार्यों में हम थे, जहां पत्थर पड़ते थे कि ये पूजा कराने क्यों आए। एक भगवान दास थे जज, उनसे इस गर्भगृह के ऊपर पूजा कराई गई थी चबूतरे की, उसके बाद एक छवि लाई गई जुगल किशोर बिरला जी की, हड्डी टूट गई, उसको एक बालक आता है हाथ लगाता है, वो स्वरूप बन के आवे उसके लिए वे रोते थे, और जो अब गर्भगृह के ऊपर विराजमान है वो छवि बहुत सी छवियों के बाद रखी गई कि यहां मथुरा के विद्वान आवेंगे। और महाराज जी आपको स्मरण दिलाऊं, यहां का कार्य ब्रज के वैष्णवों ने किया था, ये बैठे हैं यहां पर डॉक्टर अच्युतलाल भट्ट, इनके पूज्य पिताजी प्रधान व्यास थे 1965, और मैंने 300 विद्वानों को साथ में लेकर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हृदय में जो आपका दर्द था कि ब्रजवासी बैठ करके यहां भागवत जी का पाठ करा, मैं उच्चारण सहित पाठ हुआ था, आप सब लोग जानते हैं। लोगों ने कहा कि बाहर के विद्वान बुलवा लें, जो तीस आपके हृदय में है देवी संत थे, उन्होंने कहा नहीं, मरे यहां के विद्वान, जिए यहां के विद्वान, और यहां विद्वान हैं तो हम मथुरा वृंदावन के विद्वानों को बुलाकर और इस चबूतरे पर श्रीमद् भागवत का सत्वर पाठ कराएंगे। प्रश्न आया कि पंचम स्कंद न कराया जाए, मुझसे कहा भाई जी ने आप भागवत का पंचम स्कंद मत कराना। मैंने कहा क्यों, क्या आपको यहां के विद्वानों पर कुछ शक है? बोले बहुत कठिन है, अशुद्ध हो जाएगा। मैंने कहा आप पुस्तक लेकर बैठे, वे गर्भगृह में बैठे जयदयाल डालमिया, हनुमान प्रसाद पोद्दार और हमारे मथुरा वृंदावन के ब्रज के विद्वानों ने ये सिद्ध कर दिया। उस दिन 6 घंटे बैठे थे, बाढ़ उत्तम भगवत उत्तम श्लोक भगवत चरणारविंद मकरंद रस, इस ढंग से पाठ हुआ जो मुझे हृदय से लगाया था हनुमान प्रसाद जी ने, वैष्णवों से ही इसका प्रारंभ हुआ, वैष्णवों से ही ये कार्य आगे बढ़ा, भागवत भवन बना। और वहां भी स्वामी जी ने कहा कि वैष्णवों के द्वारा ही इसका सत्कार हो। मैंने कहा केशव देव जी की मूर्ति ले आओ तब हम सहयोग करें, वो कानपुर चली गई थी अभी तक नहीं आई है, वो चोरी हो गई, इससे मतभेद भी हुआ। खैर खैर उन्होंने सब कार्य कराया और मैं चबूतरे से लेकर भागवत भवन के भागवत तक जुड़ा रहा। अब वो नहीं बुलाते, आपने ध्यान आकर्षण हमारा नहीं किया, आपने धिक्कारी उन लोगों को दी जो मथुरा के इतने विद्वानों को रहते हुए और उनको सागर वहां पर निमंत्रण नहीं देते, इसके लिए हम किन शब्दों से उनकी भर्त्सना करें ये समझ में नहीं आता। मुझे विश्वास है महाराज आपकी ये टीस मथुरा की जनता के हृदय में जाएगी और आगे ये समझेंगे कि जो मथुरा के लिए मरे थे मथुरा के लिए जिए थे उन मथुरा की भी हस्तियों को विद्वानों को इस कृष्ण जन्मभूमि पर सादर आमंत्रित किया जाए और बुलाया जाए। अब मैं आज के एक आनंद की चर्चा, महाराज जी ने विचार किया ब्रह्मेश परमात्मे की भगवान तो शब्द थे, ऐसा सुंदर विषय लाए श्रीमद् भागवत जी के हिंदी अर्थ में, बहुत सी जगह त्रुटियां हैं जो गीता के गोरखपुर से प्रकाशित है, क्षमा कर, वहां पर हमारे वैष्णव धर्म को तोड़ मरोड़ करके रखा गया। मैंने संकल्प कराया था 18,000 श्लोक लिखे जाएंगे यहां पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से नीम में, ताम्र पत्र तो लग गए, भागवत के श्लोक हैं 14,500 से, ना तो मध्य संप्रदाय के श्लोक लिए इन्होंने, मध्य संप्रदाय में विजय ध्वज ने 104 अध्याय मानिए दशम स्कंद के, क्यों नहीं लिए? वो हमारे गीता प्रेस में जो है वो ही लेंगे, हम दूसरे कैसे ले लें, श्रीधर स्वामी ने जो किया है सही लेंगे, हम दूसरे क्यों ले लें? अरे एक तरफ तुम्हारे 18,000 श्लोक बोलते हो रे और प्राप्त कितने हैं 14,500, उसमें भी इसी और दशम स्कंदे पूर्वार्धे अनुष्टुप श्लोकों की गिनती करके भी नहीं हो पा रहे। जर्मन की लाइब्रेरी में मिल गए राम नारायण भाव भाव विभाव का की टीका के साथ। मैंने अखंडानंद जी महाराज से कहा इन श्लोकों को ले लो, उस संख्या तो बढ़ जाएगी। टीवी त्रिपाठी बन महाराज के आए थे, प्रिंसिपल थे, मैंने निवेदन किया ये गद्य कहां से आ गया भागवत जी के पंचम स्कंद में। उन्होंने कहा वासुदेव जी मिल गया पर ये लोग दे नहीं रहे। जब आप विदेश यात्रा गए मैंने स्मरण दिलाया महाराज जी भागवत जी का कहीं से भी कोई संस्करण किसी भी लाइब्रेरी में मिले तो फोटो स्टेट करा के एक बार लाओ, हमारी भागवत जी को पूर्ण करो। जहां बैठता हूं एक प्रार्थना करता हूं 18,000 श्लोकों के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। आज का विषय ब्रह्मेश परमात्मे जी भगवान के शब्द थी। हमें तीन बात बता करके संतोष कर दिया। अद्वैतवादी उसे ब्रह्म कहते हैं, गीता में उसे परमात्मा कहते हैं और भागवत में उसको भगवान कहते हैं। ब्रह्मेश परमात्मे जी भगवान के शब्द थी। जबकि एक ही विषय है, एक ही वस्तु है, प्रतिपाद्य वस्तु एक है, भगवान श्री कृष्ण वो त्रिधा रूप से है, त्रिधा रूप से होते हुए भी और कटेगरी कर दी ये अद्वैत, ये स्मृति और ये भागवत का भगवान। भेद के द्वारा उसका जो तत्व था, जिस तत्व के लिए जीव गोस्वामी जी, जिस तत्व के लिए हमारे आचार्यों ने त्रिवर्ग और अपवर्ग की कल्पना की थी, धर्म अर्थ काम का नाम त्रिवर्ग, मोक्ष का नाम अपवर्ग, उससे भक्त संदर्भ में कर्मी योगी ज्ञानी और भक्त, कर्मी जनों को धर्म का फल धन, अर्थ का काम, काम का फल धर्म, योगियों को साधना का फल सम दम आदि, ज्ञानी धर्मानुष्ठान का फल मोक्ष अथवा जीव ब्रह्म की एकता में मानती और भक्त साधना का फल श्रवण कीर्तनादि युक्त भगवान की सेवा को निर्धारण करती है। अपवर्ग कुछ नहीं है, भक्तों के मन में जो प्रेम भक्ति है उसका ही नाम है अपवर्ग। अद्वैत शब्द पर लगे ये लोग कि वो तो अद्वैतवाद हो गया। ना ना ना, उस तत्व का अखंडित भाव निर्देश करते हुए ब्रह्म परमात्मा और भगवान प्रत्येक को दूसरे से अभिन्न कहते हुए इस तत्व में शक्तित्व को स्वीकार किया गया। ब्रह्म माने केवल ज्ञान, अंतर्यामित्वमय माया शक्ति, प्रधान चित शक्ति के अंश विशिष्ट ज्ञान का नाम परमात्मा, परपूर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट ज्ञान का नाम भगवान। सजाति विजाति और स्वगत तीन भेदों से समझाया था। तो जो मानव मानव सजाति, मानव पशु विजाति और मानव मानव के हाथ पैर ये स्वगत, श्री जीव गोस्वामी जी ने अपनी व्याख्या में कहा इन तीनों भेदों से रहत जो सच्चेदार है वही है अद्वैत ज्ञान। अद्वैत शब्द से तीनों का अखंडत्व सिद्ध किया। शक्ति सत्यमान से भिन्न होते हुए भी सत्यमान से अभिन्न है और इन बातों को जब तक तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ और परमात्म संदर्भ, षट संदर्भ में उनमें से तीनों को जब तक मथन न करें बड़ा कठिन इनका विचार हो जाता है। अद्वैत शब्द से तीनों का अखंडत्व सिद्ध किया है। अद्वैत ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेन्द्र नंदन सर्वादि सर्वंशी किशोर शेखर केदानंद देह सर्वास्त्र सर्वेश्वर ब्रह्म अंग कांत तारण निर्विशेष प्रकाश चैतन्य चरतामृत। तो ये जो तत्व रखा है महाराज जी ने कि वैष्णवों के मस्तिष्क में से ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये अलग तत्व हैं, वह न समझे अपितु आपका विचार है कि वो एक ही तत्व है और सर्वश्रेष्ठ तत्व है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर संदर्भ सार के साथ साथ जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण लीला का विस्तार किया। ब्रह्म नारद संवाद से समग्र स्कंदों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सिद्ध किया और बता दिया कि यहाँ पर उनके समान और कोई नहीं है। कृष्ण तत्व के ये तीन भेद हैं, इसको समझाते हुए और आपने अपने तत्व से आत्मा कैसे जड़ है, क्षणिक है, कर्मांग है, परमात्मा क्या है, इन सारी चीजों को श्रीधर जी ने रामानुजाचार्य के अनुयायी वीर राघवाचार्य ने और निम्बार्क के अनुगामी सुखदेव जी ने सनात जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ में, तत्वत्रय संदर्भ में और अन्य स्थलों पर इन समग्र टीकाकारों ने बहुत बड़ी व्याख्या की है। मैं उसको यहाँ वर्णन नहीं कर सकता क्यों वल्लभाचार्य जी ने भी धर्मो विश्वस जगत प्रतिष्ठा के अनुसार लिख दिया कि सत्व का अर्थ है भगवान, वो जिसमें रहे उसका नाम है सात्वत, सत्वत सत्वो भगवान सौ वर्तते ये शांत सात्वता, सात्वतों के पति भगवान है सुबोधनी जी 1, 2, 14। तो इस प्रकार से वैष्णवाचार्यों ने जो एक बहुत बड़ा कार्य किया था ब्रह्मे परमात्मे जी का, जिस पर बड़े विचार थे हमारे श्री पूज्य स्वामी जी ने, वही विषय आज इन विद्वानों से सुनने के लिए रखा है कि आज हम सुने ये क्या है ब्रह्म परमात्मा और भगवान। मैं इस निबंध को यहाँ पूरा न तो पढ़ सकता हूँ और न इसको बोलने का समय रखता हूँ। सभा का एक क्रम होता है कि विद्वान वक्ता को ये भी देखना चाहिए कि उसे कितना समय है। फलतः मैं आपको एक टाइप की प्रति दे देता हूँ ब्रह्म परमात्मा और भगवान की, और महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ कि मैं पूरा निबंध यहाँ नहीं पढ़ सकता, मैं इतना टाइम है, मुझे विद्वानों से सुनना है, इसलिए अपना वक्तव्य यहीं विराम लेता हूँ। और अब मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी चतुर्वेदी जी से कि वे अब प्रारंभ करें समय की मर्यादा रहते हुए, और जिस लिए महाराज ने आप लोगों को बुलाया है मुखारविंद से आपकी अमृत वाणी हम सबको सुनने को मिले। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी चतुर्वेदी बजे हैं 10-10 मिनट सब क्यों 8 जने हैं 10 मिनट
गोरकणी स्मृत सुषुमणी स्थान पर जाना है, जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम करके आए लौट के आवेगा, अपने घर में ही आवेगा, अपने घर में ही निवास करेगा, तो भगवान का सदा सदा से ये मथुरा ही निवास करता है। उसी में आकर के आपने जन्म दिया, जन्म क्या दिया, आविर्भाव हुआ, काटक हुआ, मथुरा से अन्यत्र अन्य किसी जगह पर भगवान का जन्म नहीं है, उस पर लीला स्थल है। और मथुरा में जन्म लेने के बाद में भगवान ने केवल मात्र एक लीला की है, उस एक लीला से अनेक लीलाएं करके अनेक नामों को प्राप्त किया है। वो केवल भगवान गोलोक राम से आए थे इस भूमि में गौ को चराने के लिए, गौ का पालन करने के लिए। भगवान का सबसे पहला जो नाम है कृष्ण का वो गोपाल है, जिस गोपाल की ये भूमि है, गोपालपुरी है, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, गोपालपुरी नाम से इसको प्रस्तुत किया है। और इसको भगवान के जन्म से, भगवान की लीला होने से ब्रज में भी चार चांद लगे। ब्रजमंडल की राजधानी मथुरा है, इस मथुरा में भगवान ने अपना जन्म ले करके या प्रकट होकर के यहां से सब लीला की, और जिन भक्तों को पहले से वचन दिया उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप ब्रजभूमि में सब चले गए। अनेकों लीलाओं के अनेकों नामों का भक्तों के लिए अवलंबन किया, केवल गोपाल गोचारण कराने के लिए आप निकले हैं, तो वन में जो गए हैं अनेकों वहां जाकर के निपुण लीलाएं की हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं, गोवर्धन लीला है, अनेकों असुरों को मारना है, अनेक रूपधारी जो कई किए उन सभी को ब्रज में अनेक लीलाओं में आपने जो वर्णन होता है सब किया है। और महाराज लीला है, उन्हें अपने गुरु वचनों को पूर्ण करने के लिए जो रामावतार में मर्यादित जो लीला थी, उस समय में यह दो भुगन्याओं को तीर्थ लीला के समय में तो महाराज ने अनेकों प्रकार की गोपियों का एक समूह एकत्र हुआ। इस प्रकार की भगवान की विविध लीला है, मुख्य लीला जो है वो गोचारण लीला है। जब भी देखो श्रीमद् भागवत में आप गोचराने को गए तो वहां कालिदास को भी मारा, आप गोचराने को दावानल का पान किया, आप गोचराने को गए तो वहां दसवें स्कंद के 18वें अध्याय में अनेकों पूर्ण राज्यमय लीलाओं का वर्णन किया है। क्वचित स्पन्न गया, कहीं से गया, इसकी सब दान लीला है, झूला लीला है, अनेकों लीलाओं का वर्णन है उसमें। तो ऐसा श्रीमद् भागवत में परम तत्व स्वरूप जो भगवान का ये स्वरूप है उसको ब्रह्मेश परमात्मा के भगवान सत्यदेव कहा है, उसमें ये सब उपासना का भेद है। वास्तविक तत्व जो है वो तीनों एक ही तत्व है, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे उसको ब्रह्म कहो। ब्रह्म है वेदांत का विषय है, परमात्मा है वो अन्य उपासना मार्ग का विषय है, भक्तों का विषय वो भगवान है। वो भगवान श्रीमद् भागवत में पद पद से अपनी लीलाओं से विभिन्न प्रकार की जो लीला है उन लीलाओं से युक्त है। और पुराण के जो 10 लक्षणों को वर्णन किया है, 10 लक्षण, उन लक्षणों में भी विष्णु सर्ग सर्गार नव लक्षण लक्षितम इस प्रकार से है। वो परब्रह्म अक्षर ब्रह्म जिसको बताया है, जिसको दसवीं लीला विशिष्ट जो है वो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ही है, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो वो अग्नि जी ने इस बात पे बहुत ही सुंदर ढंग से आचार्य चरणों ने विस्तृत वर्णन किया है। भारत प्रकरण ने भी इसको विस्तृत वर्णन किया है। उस भगवान की प्राप्ति जो आज की सभा का मुख्य विषय है वो बड़ा ही विद्वानों में चर्चा का विषय बन गया था। ब्रह्मेन्द्र परमात्म ने भी तो स्पष्ट तीन मंत्रों में लिखा हुआ था उस पर, परंतु उसमें एक रहस्य में जो कि चरम विषय प्रतिपाद्य है वो चरम विषय प्रतिपाद्य को लेकर के आज की सभा बुलाई गई है। उसमें चरम विषय के विषय में विद्वानों की विविध प्रकार की संख्या समाधान विचारे चलते थे। वो चरम विषय क्या है तो वेद्यम वास्तव वर्षमस्वयं श्रवण स्नातक प्रयोगम। इस श्रीमद् भागवत में जो अनुबंध चतुर्थ वर्णन किया है उसमें वेद्य वास्तव वस्तु क्या है, वो वेद वास्तव वस्तु जो है वही भगवान श्री कृष्ण है, उसी का प्रतिपादन अनेकों लीलाओं से किया गया है। और सभी का था जो ये श्रीमद् भागवत है जिसको आचार्य श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने बड़े बढ़िया ढंग से इसको वर्णन किया है कि इसमें जो भाषा है ये लौकिक की भाषा अलग है, परम भाषा अलग है, समाधि भाषा अलग है। अनुबंध चतुर्थ में समाधि भाषा व्याकृत्य समाज भाषा को लिया है, जहाँ पुस्तको वाचो व्यासो वाचो कि भगवान वाचो है वही समाज भाषा है। अन्य भक्ताओं के वाचों में परम भाषा की है, जहाँ लौकिक वर्णन किया उसको लौकिक भाषा बनाया है। ये रहस्य उसमें छुपा हुआ है। यहाँ से सुखदेव जी ने परिचित राजा को भागवत का श्री ग्रहण किया है। न केवल तीन विषय बताई है, प्रबल कीर्तन भक्त अन्य नवदा भक्तियों को सभी को अंतर्भाव कर दिया उसने। इन तीन विषयों को लेकर के आखिरी गए उसका उपसंहार किया है। तो बाल संसद में जाकर के भी इन्हीं तीनों विषयों में सर्वश्रेष्ठता किसकी बताई है वो सर्वश्रेष्ठता उसने सूचित की है। सभी विषय को वर्णन करते हुए आश्रय को मतलाते हुए आश्रय जो है वो आश्रय भगवान को ही मतलाया है, वो आश्रय को लीला रूप भी मतलाया है। ये सब विशिष्ट जो लीला है उस लीला विशिष्ट पुरुषोत्तम जो श्री भगवान है जिसको गीता ने अत्यंत प्रभु पर प्रभु सभी से अलग जो पुरुषोत्तम बतला करके पंद्रह अध्याय में वर्णन किया है उसी को श्रीमद् भागवत में कहा है, उसी को आचार्यों ने वर्णन कहा है। और प्रभु शब्द एक ऐसा है, प्रभु किसको कहती है, प्रकर्षेण भवती भी प्रभु, जिसके आदिभाव होने में जिसके रहने में कोई विकल्प है उत्सव है विदेशता है हम प्रभु उसी को कहेंगे। तभी उसका एक प्रतीक लेकर के आप देखिए अपनी संप्रदाय में महाप्रभु बल्लभाचार्य जी एक अन्य महाप्रभु उस प्रभु शब्द को जोड़ा गया है क्योंकि उसमें उत्कर्ष वाली बात है। उत्कर्ष में क्या है कि महाप्रभु जी ने सेवा धर्म जो है वो परम योगियों के लिए दुर्गम है उस सेवा मार्ग को सरल किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरी कीर्तन की प्रधानता कही है, वही चरम मेरे हृदय से मेरे हृदय से जो उसको आभास होता है उस कीर्तन को ही सभी लोगों भक्ति ने श्रेष्ठ बताया है। यही भागवत का चरम हृदय उनको प्रतीत होता है। विद्वान लोग इस पर विचार करें तो उस कीर्तन के बाद नहीं अंतिम कोई स्थिति नहीं मिल रही है। अन्य जो भक्ति है उनमें सभी साधनों की आवश्यकता है। कीर्तन एक ऐसा है कि सभी से जो निवृत्त होकर के भाव में मग्न होकर के जो संतों के वाणी सुनी है उसका स्मरण करने के बाद भगवान का स्वरूप हृदय में धारण करने के बाद तल्लीन होकर के जब वो कीर्तन करता है तो चरम सीमा हो जाती है भागवत का जो कि अंतिम इसमें विषय वर्णन किया है वो कीर्तन है। उस कीर्तन के करने से साधारण ऐसे व्यक्ति की कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन के लिए नामलीला गुणालीला उच्च ही भाषा प्रकीर्तनम नारद भक्त सूत्र में इसका वर्णन किया गया है कि उच्च भाषा से नाम कीर्तन
लीला कीर्तन और भगवान के गुणों का कीर्तन है, तीन प्रकार का कीर्तन जो होता है उसी से भगवत प्राप्ति होती है। और भगवत प्राप्ति के लिए कीर्तन से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है, इसीलिए कीर्तन की महत्ता है। और आज कीर्तन के स्थल में कीर्तन की संपदा जो चैतन्य महाप्रभु ने लोक कल्याण के लिए इस प्रकार से लोक में प्रसारित की है, आज हम उस कीर्तन की महत्ता को बतलाते हैं कि कलयुग में जो कि अन्य अन्य युगों में अन्य अन्य कार्यों के करने से पूजा से स्मरण से भगवत प्राप्ति होती है, सर्वोत्तम हर कीर्तन कलयुग में केवल प्रवाही जीवों के लिए केवल भगवान का कीर्तन करना ही भगवत प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य है। मैं इसी को चरम विषय मानते हुए अपने वक्तव्य को श्री चरणों में निवेदन करते हुए श्रीमदी यशोदा सुखपद कमले नक्तराम ये महावीर कन्या प्रिय माता कले नानुदत्ता सख्या ये श्री कृष्ण लीला ललित रस तथा सारौ नैव करौ जगतान 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 कथयत सततम कीर्तन सो मृदंगा। कीर्तन के रूप हो तो मृदंगी देखता देती है और क्या बात कही
जाए। अभी आपके समक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम नारायण ने विचार व्यक्त करते हुए आप कितनी सुंदर बात कही, कीर्तन का स्थल और प्रतिभा के लिए सबसे बड़ा कीर्तन। आपने भगवान के इस प्रादुर्भाव स्थली को वस्तु पर इतना महत्व दिया कि वो तो उनका आश्रय स्थान हमेशा से रहा भगवत मथुरा भगवान के प्रति जिसके हरी बहुत सुंदर विवेचन किया, बहुत सुंदर विचार रखे। आपकी सभा के मुख्य प्रतिपाद्य पर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। अब इसी श्रृंखला में हमारे पास अभी 60 मिनट का समय है और वक्ता भाव है, तो अब कृपया 10 मिनट में अपने मंतव्य ब्रह्मेश परमात्मा की भगवान के संस्कृति पर अपने मुखारवंद से ठाकुर जी के लिए अपने दो प्रमुख शब्दों से आप लोग प्रकट करते हैं तो सबका ही नंबर आ जाएगा और सब कोई सुनना चाहते हैं। महाराज जी, मैं श्री जगदीश प्रसाद जी व्याकरण आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने दो शब्द यहाँ श्रद्धांजलि के रूप में ठाकुर जी के पुष्प समर्पण के रूप में प्रस्तुत करने की कृपा करें।
हिंदी भाषाएं हमें वो बदलती थी कि एक इंडिया से देता हाँ और तो उधर अपनी हिंदी भाषा या मेरे वचनी मानसी इच्छा ये है कि ऐसे आयोजनों में भी जहाँ विद्वानों का समाज आयोजन हो रहा है वहाँ पर भी यदि संस्कृत भाषा को प्रधानता नहीं दी जाएगी तो ये भला की संस्कृत भाषा का आश्रय कहाँ होगा। इसलिए समायोजन दलों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आयोजनों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाए और ऐसे ही विद्वानों को आमंत्रण भी दिया जाए तो संस्कृत बोलने में सक्षम हो। प्रार्थना है कि इस पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर समायोजित अश्विन पर्व में निमंत्रण पत्र उल्लखित वर्तते श्रीमद् भागवत चरण प्रतिपाद्य
के लिए हुआ।